अब रिश्ता जुड़ने वाला है तो आना जाना लगा ही रहेगा। इस हिसाब से आपकी नगरी से मेरा परिचय तो होना ही चाहिए, इसीलिए हम लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं जहां सिर्फ आप और मैं हूं, और साथ है आपकी तन्हाई और मेरे दिल का करार। अक्षय ने बेफिक्री से जवाब दिया और आहाना फटी आंखों से हतप्रभ सी उसे तकती ही रह गई। आप यूं ही बेवजह सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते रहेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं? वैसा मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं, पर अगर आपको इस आइडिया से कोई एतराज है, आप मेरे साथ कहीं जाना चाहती हैं तो बता दीजिए, हम वहां भी चल सकते हैं। अक्षय ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, जिसे सुनकर आहाना ने फटी आंखों से उसे देखते हुए झट से इनकार में सर हिला दिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, पर यूं ही अगर सड़कों पर भटकते रहेंगे तो ऐसे आपका पेट्रोल वेस्ट नहीं होगा? होगा तो सही, पर मैं तो यहाँ कोई जगह नहीं जानता। अगर आप कोई सुझाव दें तो हम वहाँ चल सकते हैं, वरना आपके साथ वक्त बिताने का एक यही जरिया है मेरे पास। वैसे भी मुझे जगह से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ आपका साथ मायने रखता है और उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अक्षय का जवाब सुनकर आहाना माथे पर सिलवटें डाले कुछ पल गहरी सोच में खोई रही, फिर निगाहें अक्षय की ओर उठाते हुए बोली, पार्क चलेंगे? इस वक्त पार्क? वहाँ भीड़ नहीं होगी? अक्षय ने भौंच खाते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर आहाना ने इनकार में सर हिला दिया। वहाँ नहीं होगी? तो फिर चलिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अक्षय तुरंत ही उसकी बात मान गया और आहाना के बताए अनुसार कार ड्राइव करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद कार एक छोटे से लोहे के गेट के बाहर रुकी। अक्षय ने बाहर निकलते हुए आसपास निगाहें घुमाई तो बस इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे थे और उस इलाके में काफी शांति व हरियाली थी। चले अंदर, आहाना की आवाज़ उसके कानों से टकराई। तब कहीं जाकर उसने अपनी यहाँ वहाँ घूमती निगाहों को उस पर ठहराया और सर हिला दिया। उस लोहे के बड़े गेट से जुड़े छोटे गेट को खोलते हुए दोनों अंदर चले आए। अंदर आकर अक्षय ने एक बार फिर निगाहें चारों ओर घुमाई। ज्यादा बड़ा पार्क नहीं था, पर हरियाली भरपूर थी। बड़े बड़े घनी शाखाओं वाले पेड़, चारों ओर झाड़ियाँ लगी थीं और बीच बीच में गोलाकार में फूलों के पौधे लगे थे। बैठने के लिए बेंच थे जो काफ़ी पुराने लग रहे थे और जॉगिंग के लिए पगडंडी सी बनी थी, जिसके दोनों तरफ हरी हरी घास उगी हुई थी। जगह काफ़ी शांत थी, एक तो लोग ही मौजूद थे वहाँ। अक्षय अभी आसपास देख ही रहा था कि एक 50-60 साल के बुजुर्ग आदमी उनके पास चले आए और उन्हें देखते हुए आहाना ने विनम्र स्वर में उनका अभिवादन किया। प्रणाम काका, खुश रहो बिटिया। उन काका ने मुस्कुराकर आहाना के सर पर हाथ रखते हुए उसे आशीष दिया, जिसे उसने सर झुकाते हुए स्वीकार किया। कैसे हैं काका? हम तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं बिटिया, काका ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया, पर उनके अल्फाजों में एक दर्द और उदासी झलक रही थी, जिसे महसूस करते हुए आहाना की मुस्कान भी कुछ फीकी पड़ गई थी। ऐसा मत कहिए काका, और यूं उदास मत हुआ कीजिए। काकी आपको दुखी देखती होंगी तो उन्हें भी तकलीफ होती होगी, इसीलिए उनके लिए खुश रहा कीजिए। आहाना की बात सुनकर काका फीका सा मुस्कुरा दिए, फिर पल भर ठहरने के बाद उन्होंने आगे कहा, आप बताइए बिटिया, प्रताप बता रहा था कि आपका ब्याह होने वाला है। बगल में खड़ा अक्षय, जो दोनों की बातें खामोशी से सुनकर उनके रिश्ते की गहराई का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था, उसकी गहरी निगाहें आहाना पर ठहर गईं। शादी का सुनकर आहाना के सुर्ख कालों पर लाज की लाली बिखर गई, हया के बोझ तले उसकी पलकें झुक गईं और उसने सकुचाते हुए सहमति में सर हिला दिया। जी काका, आप शादी में जरूर आइएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हम उन नए रिश्तों को कुशलता से निभा सकें। जरूर आएंगे बिटिया, और हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। हमारी बिटिया इतनी प्यारी और समझदार है कि उस नए परिवार में जाकर सबको अपना बना लेगी। आहाना उनकी बात पर हौले से मुस्कुरा दी। काका की नज़र अब आहाना के बगल में खड़े अक्षय पर गई, जिसकी निगाहें आहाना पर ही ठहरी थी। बिटिया, आपके साथ ये लड़का कौन है? हमने पहचाना नहीं इन्हें। आहाना का ध्यान अब अक्षय पर गया। उसने सक पकाते हुए अक्षय को देखा, जो लबों पर मीठी सी मुस्कान सजाए उसे कुछ इस प्रकार देख रहा था, मानो इंतजार कर रहा हो ये देखने का कि आहाना उसका परिचय कैसे करवाएगी। आहाना पहले तो इस अप्रत्याशित सवाल को सुनकर घबरा गई, फिर उसने निगाहें झुकाई और शर्माते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, ये अक्षय जी हैं काका, इन्हीं से हमारा रिश्ता जुड़ा है। सकुचाते हुए ही सही, पर आहाना ने अक्षय से अपने रिश्ते को उजागर कर दिया था। शब्द भले ही वो नहीं थे जो अक्षय सुनना चाहता था या जिसकी उम्मीद उसे थी, पर उन शब्दों में जो एहसास खुले थे वो उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा गए थे। वहीं आहाना का जवाब सुनकर काका प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे, तो आप हमारी बिटिया को ब्याह कर हमसे दूर लेकर जाने वाले हैं? अक्षय ने सहमति में सर हिलाया, फिर आदर से सर झुकाते हुए बड़ी ही विनम्रता से उनके आगे हाथ जोड़ दिए। नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटा, महादेव आपको दीर्घायु प्रदान करे। काका ने उसके सर पर हाथ रखा, फिर दोनों को देखते हुए बोले, महादेव आपकी जोड़ी पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। काका कुछ देर दोनों से बात करते रहे, अक्षय से उसके काम व परिवार के बारे में कई सवाल किए, फिर दोनों के सर पर हाथ रखते हुए उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अक्षय ने आहाना की ओर निगाहें घुमाते हुए सवाल किया, आहाना आप उन काका के बहुत करीब हैं, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा। आहाना ने उसका सवाल सुनकर सहमति में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, जी बचपन से जानते हैं हम उन्हें, पहले हमारा घर उनके घर के साथ वाला ही था, सामने ही घर है उनका और हम उनके बच्चों के संग यहाँ खेलने भी आते थे, पापा की दोस्ती है इनसे और हमारे परिवार के बीच भी काफी अच्छे संबंध है। कुछ साल पहले पापा ने नया घर ले लिया और हम सब वहाँ चले गए तो रोज मिलना बंद हो गया, पर कभी कभी मिलते हैं, बातचीत भी होती है और काका तो हमें बिल्कुल अपनी बेटी जैसे ही चाहते हैं, दिल के बहुत अच्छे और सीधे हैं। पहले तो बहुत हंसमुख थे, खूब मजाक भी करते थे, पर काकी के जाने के बाद गमों ने उन्हें घेर लिया और वो दुखी और उदास रहने लगे। अब तो जल्दी से किसी से मिलते भी नहीं है, यहाँ से काकी की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, इसीलिए ज्यादातर वक्त यहीं बिताते हैं। हमें उनकी और काकी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, दोनों ही खुश मिजाज और जिंदा दिल थे, सबसे हंस मुस्कुराकर बात करते, पर काकी के अचानक जाने के बाद काका बिल्कुल अकेले हो गए। हम उन्हें जब दुखी देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है उनके लिए, पर हम चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आहाना शुरू में उत्साहित व प्रसन्न लग रही थी, पर अंत तक आते आते उसके चेहरे पर दुख, मायूसी व उदासी के भाव उभरने लगे। अक्षय ने खामोशी से उसकी पूरी बात सुनने के बाद अगला सवाल किया, उनके परिवार में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? है ना, उनके बेटे हैं, बहू भी अच्छी है और पोते पोती भी हैं, पर इनमें से कोई भी काकी की जगह तो नहीं ले सकता। वो उनकी अर्धांगिनी थी, जीवन साथी थी, जिनके साथ काका ने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त गुजारा था, उनकी कमी तो उन्हें खलेगी ही। ठीक कह रही हैं आप, लाइफ पार्टनर की जगह कोई नहीं ले सकता। अक्षय की बात पर आहाना ने सर हिलाया, फिर अपनी उदासी को झटकते हुए बोली, आप बैठेंगे या घूमेंगे? चंद कदम आपके साथ तय करना चाहूंगा और उस दौरान आप मुझे अपने बचपन के कुछ किस्से कहानियां सुना दीजिएगा। अक्षय ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपनी हथेली आहाना की ओर बढ़ा दी। उसके इशारे को समझते हुए आहाना ने जरा हिचकिचाते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी, जिसे अक्षय ने पूरे अधिकार के साथ थाम लिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसके स्पर्श को महसूस करते हुए आहाना की धड़कनें बेचैन उठी, एक अलग सा एहसास उसके दिल को छूकर गुजर गया। पल भर को कदम ठिठके, फिर अक्षय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलने लगी।
दोनों ही अभी खामोश थे, पर ये लम्हा बेहद खास था उनके लिए। एक दूसरे की हथेली थामे कदम से कदम मिलाते हुए चलना, ये एहसास ही उनके मन को गुदगुदाने के लिए काफी था। खुशी उनके चेहरे पर कशिश बनकर बिखरी थी, पर लबों पर सौम्य सी मुस्कान ठहरी हुई थी। आहाना के साथ को कुछ पल खामोशी से महसूस करने के बाद अक्षय ने बात शुरू की और आहाना भी धीरे धीरे उसके साथ सहज होती चली गई। कब देखते देखते दो घंटे बीत गए, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। आहाना का फोन बजा, तब कहीं जाकर दोनों को वक्त का आभास हुआ। फोन पल्लवी का था, जो जल्दी आने को कह रही थी। आहाना ने उससे बात की, फिर कातिर निगाहों से अक्षय को देखते हुए लाचारी से बोली, अब हमें जाना होगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपको और रुकने कहूंगा भी नहीं, मुझे आपके साथ इतना वक्त मिल गया वही बहुत है मेरे लिए, अब चलते हैं वापस। अक्षय उसकी भावनाओं को समझते हुए हौले से मुस्कुरा दिया। उसका जवाब सुनकर आहाना के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। आहाना, कुछ खाएंगी आप? दोनों पार्क से बाहर निकल रहे थे जब अक्षय ने उससे ये सवाल किया, जिसे सुनकर आहाना ने चौंकते हुए सर घुमाकर उसे देखा और झट से इनकार में सर हिला दिया। नहीं, हमें अभी कुछ नहीं खाना। तो कुछ पीना पसंद करेंगी? नहीं, पर अगर आपको कुछ पीना या खाना है तो हम इंतज़ार कर लेंगे। आहाना शायद कुछ और ही समझ बैठी थी। उसका जवाब सुनकर अक्षय के लब बरबस ही मुस्कुरा उठे। मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे कुछ खाने या पीने का मन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपका कुछ खाने या पीने का मन हो तो बता दीजिए, इसे मेरी तरफ से आप मेरा शुक्रिया अदा करने का तरीका समझ लीजिए। पर आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया है, आपने तो बस अपनी इच्छा जाहिर की थी और फैसला हम पर छोड़ा था, हम पर आपकी ओर से किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, चाहते तो इनकार कर देते, पर हम मिलने आए क्योंकि हम आना चाहते थे, आपको इसके लिए हमें शुक्रिया कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आहाना फ्लो फ्लो में कुछ ऐसा बोल गई कि अक्षय की मुस्कान गहरी गई और उसने इंटेंस निगाहों से आहाना को देखते हुए सवाल किया, मतलब आप यहाँ आई क्योंकि आप मुझसे मिलना चाहती थी? अक्षय के सवाल ने मुस्कान को एहसास दिलाया कि वो बेख्याली में क्या बोल गई। अपने कहे शब्द याद आते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने झेपते हुए अक्षय पर से निगाहें फेर ली और सकपकाते हुए बोली,